नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं विशाल शर्मा। सबसे पहले मुख्य समाचार। 79वां स्वतंत्रता दिवस देश विदेश में उत्साह के साथ मनाया गया। विश्व नेताओं ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक आज रात अलास्का में। भारत और सिंगापुर संयुक्त कार्य समूह की बैठक में निवेश और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में बाढ़ और भूस्खलन में कम से कम 33 लोगों की मृत्यु। और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक संधि पर पहुंचने का प्रयास एक बार फिर विफल। अब समाचार विस्तार से। भारत का 79वां स्वतंत्रता दिवस देश के साथ साथ विदेशों में भी उत्साह के साथ मनाया गया। विभिन्न देशों में स्थित भारतीय दूतावास इस महत्वपूर्ण अवसर को देशभक्ति के उल्लास के साथ मना रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के भारतीय समुदाय ने भारत का स्वतंत्रता दिवस कई स्थानों पर उत्साह और देशभक्ति के साथ मनाया। इस अवसर पर अबुधाबी स्थित भारतीय दूतावास, दुबई स्थित महावाणिज्य दूतावास और अलग अलग सामुदायिक केंद्रों में ध्वजारोहण समारोह और कई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। दुबई और अबुधाबी में अलग अलग समारोहों में महावाणिज्य दूत सतीश कुमार सिवन और राजदूत संजय सुधीर ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अमीरात के बीच साझेदारी इतिहास में अपने सबसे मजबूत स्तर पर है, जो आपसी विश्वास, साझा दृष्टिकोण और पारंपरिक राजनयिक संबंधों से अलग लोगों के आपसी गहरे संबंधों पर आधारित है। भारत के दोनों अधिकारियों ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद भी भारत के उल्लेखनीय आर्थिक विकास को रेखांकित किया। विश्व नेताओं ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर मौजूदा चुनौतियों का सामना करेगा और दोनों देशों के लिए उज्ज्वल भविष्य सुनिश्चित करेगा। उन्होंने भारत और अमरीका के संबंधों को महत्वपूर्ण और दूरगामी बताया। चीन में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने पेइचिंग में भारतीय दूतावास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। बड़ी संख्या में भारतवंशी इस आयोजन में शामिल हुए। ध्वजारोहण के बाद श्री रावत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्र के नाम संदेश से कुछ अंश पढ़े। इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। जापान के टोक्यो में भारतीय दूतावास ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। राजदूत सीबी जॉर्ज ने तिरंगा फहराया और राष्ट्रपति मुर्मू के राष्ट्र के नाम संबोधन के अंश पढ़े। मालदीव में भारतीय समुदाय के लोग हर घर तिरंगा अभियान के साथ स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी। अपने संदेश में श्री मैक्रों ने आशा व्यक्त की कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी 2047 और उसके बाद भी और गहरी होती रहेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वतंत्रता दिवस पर विश्व नेताओं की शुभकामनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग और मालदीव के राष्ट्रपति डॉ मोहम्मद मुइज़ू को उनकी हार्दिक शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत मालदीव की जनता और सरकार के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। राष्ट्रपति ने इसराइल और भारत के नागरिकों के लिए शांति, सुरक्षा और विकास की कामना भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग छोबगे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू का भी आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत फ्रांस के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और भूटान के बीच मैत्री आने वाले दिनों में और मजबूत होगी। विश्व दर्पण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक आज रात अलास्का के एंकोरेज में होगी। इस वर्ष जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात होगी। शिखर बैठक से पहले ट्रंप ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री पुतिन यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार हो जाएंगे।
We have a meeting with President Putin. I think it's going to be a good meeting, but the more important meeting will be the second meeting that we're having. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along, maybe not. I don't know that it's going to be very important. We're going to see what happens. And I think President Putin will make peace. I think President Zelensky will make peace. We'll see if they can get along. And if they can, it'll be great.
इस बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ ने कहा है कि रूस आज रात अलास्का के एंकोरेज में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच होने वाली बैठक के दौरान अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा। लावरोफ ने कहा कि बैठक में रूस अपने तर्क स्पष्टता के साथ रखेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ की रूस यात्रा के दौरान बैठक की महत्वपूर्ण रूपरेखा तैयार की गई थी। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि अलास्का में रूस और अमेरिका की शिखर बैठक से न्यायपूर्ण शांति का रास्ता खुलेगा और यूक्रेन रूस तथा अमेरिका के बीच त्रिस्तरीय सार्थक बातचीत हो सकेगी। भारत और सिंगापुर ने कल नई दिल्ली में व्यापार और निवेश पर अपने संयुक्त कार्य समूह की चौथी बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता भारत के वाणिज्य विभाग के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल और सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्रालय के स्थायी सचिव डॉ बेह स्वान जिन ने की। बैठक में व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने, रसद और आपूर्ति में सुधार, नियमों को सरल बनाने और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने सेमीकंडक्टर उद्योग और डिजिटल व्यापार में चल रहे सहयोग के साथ साथ कौशल विकास और क्षमता निर्माण जैसे नए क्षेत्रों की खोज पर भी चर्चा की। पाकिस्तान के कई उत्तर पश्चिमी जिलों में तेज बारिश और बादल फटने से आई बाढ़ और भूस्खलन से कम 33 लोगों की मृत्यु हो गई है और 25 अन्य लोग लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि बचाव दल दुर्गम क्षेत्रों और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कई हिस्सों में आई आपदा के बीच काम कर रहे हैं। बाढ़ का पानी गांवों में घुस गया है और घर तबाह हो गए हैं। प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए संयुक्त राष्ट्र वार्ता समय सीमा के बाद भी रात भर जारी रहने के बावजूद गतिरोध में फंस जाने के कारण वैश्विक समझौता करने का प्रयास एक बार फिर विफल हो गया। एक रिपोर्ट।
वर्ष 2022 से जारी इस वार्ता में अभी तक सभी देशों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई है। लगभग 100 देश प्लास्टिक उत्पादन को सीमित करने का समर्थन करते हैं, वहीं तेल उत्पादक देश इसके पुनर्चक्रण पर बल देते हैं। लगभग प्रत्येक क्षेत्र में प्लास्टिक के लाभ के बावजूद वैज्ञानिक इसमें पाए जाने वाले विषैले रसायन को लेकर विशेष रूप से चिंतित हैं। प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के कारण विषैले रसायन का रिसाव हो सकता है। वैज्ञानिक चेतावनी देते हैं कि प्लास्टिक प्रदूषण मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए खतरनाक है। सूक्ष्म प्लास्टिक अब मिट्टी, नदियों, हवा और मानव अंगों में पाए जा रहे हैं। 2024 के अंत तक इस समझौते को अंतिम रूप देने का मूल लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस समझौते को संपन्न करने का लक्ष्य अब पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। सतत प्रयास का आग्रह करते हुए क्यूबा ने इसे ऐतिहासिक अवसर का चूक जाना बताया। द्वीपीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले पलाऊ ने वार्ता में प्रगति नहीं होने की आलोचना करते हुए कहा कि वे उस संकट का खामियाजा भुगत रहे हैं जिसमें उनका कोई योगदान नहीं है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
और अब बात खेलों की। दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर ने सिनसिनाटी ओपन पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिनर ने कनाडा के ऑगर एलियासेम को 6-0, 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। ये हार्ड कोर्ट पर सिनर की लगातार 25वीं जीत थी। रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल और एंडी मरे भी ऐसा कर चुके हैं। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला फ्रांसीसी क्वालिफायर टेरेंस एटमाने से होगा। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 79वां स्वतंत्रता दिवस देश विदेश में उत्साह के साथ मनाया गया। विश्व नेताओं ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बहुप्रतीक्षित बैठक आज रात अलास्का में। भारत और सिंगापुर संयुक्त कार्य समूह की बैठक में निवेश और सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने पर जोर। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में बाढ़ और भूस्खलन से कम 33 लोगों की मृत्यु और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए वैश्विक संधि पर पहुंचने का प्रयास एक बार फिर विफल। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।